और उसे मृत्यु के समय पूरी सावधानी रहती है, बेहोश नहीं होता, वो कॉमा में नहीं जाता, पूर्ण होश में है वो। तो एक प्रकार से उसे मालूम है कि मनुष्य शरीर से निकलने के बाद में मेरा ऐसा ही जीवन भर का कर्म एवं उपासनाएं हुई हैं, साधन हुआ है, जिस साधन के फलस्वरूप मुझे ब्रह्मांड के अध्यक्ष हिरण्यगर्भ का सायुज्य ही प्राप्त होना है, ऐसा उसे दृढ़ निश्चय है। तो किसी को यदि ये मालूम हो जाए कि हमें जो आज जिस स्थिति में है इससे और अधिक उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त होने वाली है इस स्थिति को त्यागते ही, तो उसे तो उस समय उस स्थिति को त्यागने के लिए दुख नहीं होगा। मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद में हिरण्यगर्भ शरीर की ही प्राप्ति होगी, ऐसा जिसको निश्चय है उसे मनुष्य शरीर को छोड़ते समय कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, उल्टी खुशी होगी। कोई 10-20 साल का कारावास की सजा भोग रहा है कारावास की, और उसके जितना वो कारावास भोगने का समय था वो बीत गया और अंतिम दिन आ गया, तो उस दिन उसे कारावास से निकलते समय दुख होगा कि खुशी होगी? वो बड़ी खुशी मनाएगा। ऐसे ही एक प्रकार से ये जो 3.5 हद का सीमित मानव शरीर था वेष्टि, इसे अब छोड़ना है और समष्टि कार्यक्रम संघा पूरे ब्रह्मांड का अध्यक्ष रूप उसे प्राप्त होना है और ये उसे निश्चित है। तो उसे मनुष्य शरीर छोड़ते समय कष्ट नहीं होता, उल्टी खुशी होती है और खुशी खुशी में भगवान से वह प्रार्थना करता है अंतिम समय में। वो प्रार्थना उपासकों को कैसी करनी है, क्या करनी है, इसको समझाने वाले अवशिष्ट मंत्र हैं, ईशावास्योपनिषद के 4 मंत्रों में ये सब है। तो उस मार्ग की प्राप्ति में यदि कोई प्रतिबंधक है तो उस प्रतिबंधक को हटाने के लिए पहले अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना कर रहा है उपासक 15वें मंत्र में। 15वें मंत्र का उच्चारण करिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो उपासक का जो इष्ट है वो है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का ही एक नाम है, ईशावास्योपनिषद का व्याख्यान है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में हिरण्यगर्भ का सत्य एक नाम बताया है। हिरण्यगर्भ को ही सूत्रात्मा नाम से भी कहा जाता है। सूत्रात्मा ये नाम कब आता है, हिरण्यगर्भ नाम कब होता है? कहते तो समष्टि प्राण, जैसे वेष्टि प्राण होते हैं ऐसे समष्टि प्राण होते हैं। तो समष्टि प्राण उपाधिक वही चैतन्य हो जाए तो उसे कहा जाता है सूत्रात्मा, और समष्टि बुद्धि प्रधान चैतन्य का नाम है हिरण्यगर्भ। तो बुद्धि और प्राण रूपी उपाधि में से किसको आप प्रधानता दे रहे हैं उसको लेकर के वो नाम आ जाता है सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ, और उसी का एक रहस्यात्मक नाम है सत्यम। हिरण्यगर्भ को ही सत्य भी कहा जाता है। तो ये जो सत्य है यानी हिरण्यगर्भ है कहो या सूत्रात्मा कहो, इसकी प्राप्ति का जो द्वार है, मार्ग है, वो एकदम खुला ही रहता है, ऐसा नहीं, बंद रहता है द्वार। वो दरवाजा कौन है, हमेशा जो बंद रखते हैं रहता है, वो है उसका, ऐसे लकड़ी का बना हुआ हो या लोहे का बना हुआ हो, ऐसा नहीं है, वो हिरणमय है। हिरणमय मैं हिरण्य कहते हैं सोने को, तो सोना जैसे तेजस्वी है, ऐसा तेजोमय वो द्वार है। तो उसे यहां पर हिरणमय पात्र शब्द से कहा जा रहा है। मुख शब्द का अर्थ है द्वार, सत्य शब्द का अर्थ है इस उपासक को, उपासक शरीर छोड़ने के बाद में जिस हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति होनी है, वह हिरण्यगर्भ भाव सत्य शब्द से बताया जा रहा है। तो सत्यस्य मुखम यानि सत्यस्य द्वारम, सत्य को यानि हिरण्यगर्भ को, सूत्रात्मा को प्राप्त करने का जो द्वार है, वह द्वार अपिहित है यानि ढका हुआ है, बंद है। वो किससे बंद है, किससे ढका हुआ है, आवृत्त है, तो कहते हिरणमय पात्र से, वो हिरणमय पात्र है आवरण। तो हिरणमय पात्र के तरह वो पात्र है, मतलब तेजस्वी जो आदित्य मंडल है, यही एक प्रकार से वो पात्र है, आवरण है। और सूर्य की जो रश्मियां हैं, उसी को एक प्रकार से यहां पर हिरणमय पात्र शब्द से कहा जा रहा है। और वह आवरण के तरह आवरण है और उससे आवृत्त है, ढका हुआ है, सत्य के प्राप्ति का द्वार, परमात्मा प्राप्ति का द्वार, इष्ट प्राप्ति का द्वार। उपासक उस आदित्य मंडल अभिमानी पुरुष को संबोधित करके प्रार्थना कर रहा है कि हे पूषण, ये जो सूत्रात्मा कहो, सत्याख्य ब्रह्म कहो या हिरण्यगर्भ कहो, इसके दो स्वरूप हैं, एक अध्यात्म स्वरूप और एक अधिदैव स्वरूप। अधिदैव स्वरूप है उपास्य, अध्यात्म स्वरूप है उपासक। अध्यात्म स्वरूप का स्थान है ये चक्षु, हमारे शरीर में जो दक्षिण नेत्र है यानी दायना नेत्र है, आंख है, इसे कहा जाता है अध्यात्म हिरण्यगर्भ स्वरूप का स्थान, सूत्रात्मा का स्थान। चाक्षुष पुरुष वो है उपासक, अध्यात्म पुरुष, और आधिदैव पुरुष है उसका स्थान है आदित्य मंडल, सूर्य मंडल। सूर्य मंडल में है आधिदैव पुरुष, ये दोनों के दोनों एक ही पुरुष के स्थान है। अधिदैव में स्थान है आदित्य मंडल, अध्यात्म में स्थान है दक्षिण नेत्र। दक्षिण नेत्रस्थ वही चैतन्य जब तक दक्षिण नेत्र में रहता है तब तक उपासक कहलाता है, और वही चैतन्य अधिदैव आदित्य मंडल में है तो उपास्य है। और ये जो दक्षिण नेत्रस्थ चाक्षुष पुरुष उपासक है, वह आधिदैव आदित्य मंडलस्थ पुरुष की उपासना करता है मैं के रूप में, अहंग्रह उपासना, मैं के रूप में उपासना की, इसे अहंग्रह उपासना करता है। अहंग्रह उपासना का स्वरूप होता है उपास्य। उपासक क्या करेगा कि स्वभावतः ही उसे कर्म के अनुसार प्राप्त जो मनुष्य शरीर है उसके अंतकरण में जो उसकी अहंग्रह अहम इत्याकारक वृत्ति बनेगी, इस वृत्ति का स्वाभाविक विषय होता है शरीर, वेष्टि शरीर जो प्राप्त है। तो अहंग्रह उपासक का प्रयास रहता है उपासना करते समय कि स्वभावतः अपनी अहम वृत्ति का विषय बनने वाला जो ये वेष्टि कार्यकरण संघात है अध्यात्म, ये अपनी अहम वृत्ति का विषय न बने। ये प्रयास उपासक करता है कि अध्यात्म उपाधि को अपनी अहम वृत्ति का विषय वह बनने से रोकेगा, बनाने से। और जो उपास्य का स्वरूप बताया है आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के रूप में, वो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष मैं हूं, इस रूप में वह अपनी अहम वृत्ति का विषय आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को बनाएगा। आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष के स्वरूप का वर्णन उपनिषदों में है, वह उपनिषदों के अनुसार पहले आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष का जो स्वरूप है उसे उपनिषदों से जानेगा, पहले बुद्धि में सुनिश्चित करेगा। और तब जैसे ही बुद्धि में आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष का जो स्वरूप उपनिषदों ने बताया वह सुनिश्चित हो जाए तो उसके पश्चात उसकी साधना शुरू होगी। और साधना अहंग्रह उपासक की यही होती है कि वह हमेशा सावधान रहता है, जहां अहम वृत्ति बनती है वहीं पर अपने आप को केंद्रित रखता है। और अहम वृत्ति के बनते ही उसका प्रयास होता है कि वेष्टि अध्यात्म उपाधि उस अहम वृत्ति का विषय न बने और जो इष्ट है अधिदैव आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष वही उसकी उपाधि अहम वृत्ति का विषय बने। ऐसा प्रयास करता रहेगा, उपासना जैसे ही शुरू हुई तो यही प्रयास करेगा। और यह प्रयास करते करते उसे जब सफलता मिलेगी तो अहंग्रह उपासना का परिपाक माना जाता है। उपासक कि अहम वृत्ति अनायास यानी बिना प्रयास के सहज अपने उपास्य को ही अपना विषय बना ले। जितना सहज अज्ञानी की अहम वृत्ति उसके शरीर को विषय बनाती है उतनी सहज अहम वृत्ति यदि उपास्य के स्वरूप को विषय बनाती है तो माना जाता है उपासक की उपासना सफल हो गई। उपासक शरीर में रहते रहते ही उपास्य का स्वरूप अहम वृत्ति का अच्छी तरह से विषय बनना चाहिए, सहज विषय बनना चाहिए, अनायास विषय बनना चाहिए, बिना प्रयास के विषय बनता है तो माना जाता है अहंग्रह उपासना का परिपाक हो गया। ऐसी अहंग्रह उपासना जिसकी परिपक्व हो गई है ऐसे उपासक को मनुष्य शरीर छूटने के बाद में उपास्य का सायुज्य प्राप्त होता है। और यदि उपासना में न्यूनता रही तो फिर सायुज्य प्राप्त नहीं होगा, या तो सलोकता प्राप्त होगी या समीपता प्राप्त होगी या सारूप्य प्राप्त होगा। बाकी जो तीन मुक्तियां हैं लोकांतःपाती चार मुक्ति हैं, सायुज्य सामीप्य सारूप्य और सलोकता। तो जिसकी मनुष्य शरीर में रहते रहते अहंग्रह उपासना पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है उसे चार मुक्तियों में से सायुज्य मुक्ति मिलती है। और यदि उपासना में न्यूनता रह गई तो सलोकता या समीपता या सारूप्य इन तीन में से किसी न किसी से संतोष करना पड़ता है। इसे जो प्रतिस्पर्धा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करता है उसे तो ये प्रथम पुरस्कार मिलता है ना, और प्रथम नहीं प्राप्त कर पाया स्थान तो द्वितीय तृतीय यानी स्वर्ण पदक नहीं प्राप्त कर पाया तो रजत से या कांसे से ही संतोष करना पड़ता है। जैसे ऐसे ही अहंग्रह उपासना मनुष्य शरीर में रहते रहते जिसकी पूर्ण नहीं हो पाई उनको तो फिर बाकी तीन में से किसी न किसी मुक्ति से संतोष करना पड़ता है, और जिनकी उपासना परिपक्व हो गई है उन्हें सायुज्य की प्राप्ति होती है। और सायुज्य की प्राप्ति करते समय उपासक शरीर छोड़ रहा है तो ये प्रार्थना कर रहा है अपने इष्ट देव से कि हे कुशन। तो पूषा कहते हैं जगत का पोषण करने वाला, कुश पुष्टौ धातु से पूषण शब्द बना है पोषक, यानी सबका संपोषक है। जो सूर्य सबका संपोषक है, किस प्रकार संपोषक बनता है? यदि पृथ्वी पर वृष्टि न हो तो जीवन के लिए आवश्यक जो जल और अन्न है वह नहीं मिल पाएगा, और ये वृष्टि करने में निमित्त बन जाता है आदित्य। कहते हैं कि अग्नो प्रास्ता हुति सम्यक आदित्यम प्रतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टि, वृष्टे अन्नम ततः प्रजा। जगत का संपोषक इस प्रकार बनता है कि हम इस पृथ्वी में रह करके अग्नि में जो आहुति डालते हैं वह सूक्ष्म रूप धारण करके चली जाती है आदित्य के पास, और आदित्य फिर वृष्टि कर देते हैं, और वृष्टि से फिर अन्न होता है, और उससे फिर प्रजा होती है। इस प्रकार ये पृथ्वी पर जीवन भी मनुष्य का बना हुआ है, और अन्न जल आदि दे करके और बोए हुए फसल को यदि सूर्योदय न हो, ठीक से गर्मी न मिले तो फसल का वो परिपाक भी नहीं होगा, फलादि बनेंगे नहीं। तो इस प्रकार फलादि का भी संपोषक बन करके आदित्य जगत का पोषक होने के कारण आदित्य को कहा जाता है पूषण। पूषा शब्द से संबोधन में हे पूषण ऐसा संबोधन उपासक कर रहा है कि हे पूषण। और ये सब प्रार्थना कब की है? अभी मृत्यु सन्निकट है, मृत्यु का समय आया है, उस समय वैदिक साधन जिसने जीवन भर किया है उसे मालूम होता है अब ये मेरा अंतिम समय है, और अंतिम समय ये प्रार्थना करता है कि हे पूषण त्वं तत् अपावृणु। आप क्या करिए कि वह जो आपके द्वार का आवरण है आपकी प्राप्ति में प्रतिबंधक बना हुआ है, हिरणमय पात्र जिससे कि आपका द्वार ढका हुआ है, उसे आप खोलिए, उसे हटाइए। अपावरण का मतलब उस पात्र को हटा दीजिए, आवरण को दूर करिए। तत् शब्द का अर्थ है तत्त्वम में वह आवरण, हिरणमय पात्र, और अपावरण का अर्थ होता है हटा दीजिए। ये प्रार्थना कर रहा है आपकी प्राप्ति में जो प्रतिबंधक है उसे आप दूर करिए, ये प्रार्थना उपासक करता है। कहते क्यों उस हिरणमय पात्र को हटाने के लिए कह रहे हो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो कहते हैं दृष्टय, मैं आपको देख सकूं। ये जो आपकी तेजस्वी रश्मियां हैं। ये आदित्य मंडल तो उपास्य का स्थान है और आदित्य की ये जो सर्वत्र फैली हुई रश्मियां हैं तेजस्वी, ये आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष नहीं है, ये तो एक प्रकार से उस पुरुष को हम देखना चाहते हैं तो हमारे आंख को क्या करती है, आवृत्त करके रखती है। सीधे आप प्रखर जो सूर्योदय हुआ हो और मध्याह्न का सूर्य हो उसे आंख से देखना चाहे तो देख नहीं सकते, इतना उसका अधिक तेज है तो आंख को अवरुद्ध कर देता है। तो इसके लिए यहां पर उपासक कह रहा है कि मैं इन तेजस्वी रश्मियों को नहीं देखना चाहता हूं, आवरण को नहीं देखना चाहता हूं, इससे अवरुद्ध हुआ जो आपका स्वरूप है उस स्वरूप को देखना चाहता हूं, उसकी उपलब्धि प्राप्ति करना चाहता हूं। और उसकी प्राप्ति जब तक यह हिरणमय पात्र बीच में आवरण के रूप में है वह नहीं हटेगा तो नहीं हो पाएगी। मंदिर में आप गए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए लेकिन दरवाजे में पर्दा है, वो पर्दा जब तक नहीं हटेगा तो तब तक दर्शन नहीं हो पाएगा ना। ऐसे ही एक प्रकार से पर्दे की तरह पर्दा है ये हिरणमय पात्र, इसे आप हटा दीजिए तो हम आपका दर्शन कर सके। इसलिए कहते हैं दृष्ट है, कहते मेरा दर्शन तो सबको नहीं होता, मेरे दर्शन के लिए तो उत्कृष्ट पुण्य की आवश्यकता होती है। कहते मैं वैसा ही हूं, मैंने जीवन भर यही किया है, इसलिए कहते हैं कि सत्य धर्माय, मैं कैसा हूं तो सत्य धर्मा हूं। यानी सत्य कहते हैं यथार्थ को, वास्तविकता को। तो वास्तविक जो धर्म है वो जिसका है उसे कहा जाता है सत्य धर्मा, मैंने वास्तविक धर्म का अनुष्ठान किया है। वास्तविक धर्म है शास्त्र ने धर्म का जो स्वरूप बताया है वैसा ही धर्मानुष्ठान हो जाए तो जिसके द्वारा हुआ उसे कहा जाता है सत्य धर्म। वेदों ने मेरे यानी मनुष्य के लिए जो कर्म बताया है जैसा करने के लिए, मैंने उसमें अपने सुख के उद्देश्य से अपने स्वार्थवशात कोई परिवर्तन किए बिना जैसा शास्त्र ने बताया वैसा ही जीवन भर वर्ण एवं आश्रम धर्म का पालन किया है। और जो आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष की उपासना जैसे वेदों ने बताई है वैसी ही मैंने की है, अतः मैं शास्त्र ने जैसा चिंतन करने के लिए बताया है जैसा कर्म करने के लिए बताया है वैसा ही जीवन भर कर चुका हूं, इसलिए सत्य धर्मा हूं, आपके दर्शन का अधिकारी हूं। आपके दर्शन के लिए आवश्यक जो साधन होता है उस साधन से परिपूर्ण हूं, वो साधन मैंने किया है, इसलिए आपका मुझे दर्शन हो सके। और वो दर्शन तभी हो पाएगा जब हिरणमय पात्र को आप हटाएंगे। इसलिए यहां पर प्रार्थना करता है कि उपासक हे भूषण त्वं तत् अपावृणु, हे भगवान आप सबका पोषण करने वाले हैं तो मेरे साधना का भी आप पोषण करिए। साधना का पोषण तो तब माना जाता है साध्य की, साधक को प्राप्ति हो, तो साध्य की प्राप्ति का मतलब है आपकी मुझे प्राप्ति हो। आपकी प्राप्ति के लिए ही, आपका सायुज्य प्राप्त करने के लिए मैंने जीवन भर साधना की है, तो आप मेरे साधना के संपोषक बनिए। सबके संपोषक होते हैं और मेरे साधना की संपुष्टि का अर्थ है आपकी मुझे प्राप्ति, आपकी प्राप्ति मुझे कराइए। इस प्रकार हिरणमयन पात्रेण इत्यादि मंत्र से अंतिम समय में उपासक प्रार्थना करता है ये आवरण हटाने के लिए। और भी आगे प्रार्थना है तीन मंत्रों से इस पर विचार हम लोग करेंगे क्रमतः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
हरिओम।